आज गौरी विसर्जन भी है और राधाष्टमी 15 दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी, आज राधाष्टमी। आज के दिन भी पंजीरी आदि बनाते हैं, हाँ, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वृषभानुनंदिनी बरसाने की महारानी, लघु वासुदेव मरणम, श्रवण करने के लिए इन 6 लिंगों की आवश्यकता है, अर्थात ये 6 तरीका है। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। मोटे मोटे अर्थ ध्यान में रखना चाहिए, जहां से शुरू हो वहीं पर समापन हो। पहला, बार बार उसी बात को बोला जाए, अभ्यास। और जिसको उपनिषद के अतिरिक्त न जाना जा सके, ये उसकी अपूर्वता। बाकी चीजों को तो आप बिना उपनिषद के भी जान सकते हो, लेकिन आत्मा के बारे में जानना है तो उपनिषद के द्वारा ही वह जाना जा सकता है, ये इसकी अपूर्वता है। और फल है विदेह मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करना। अर्थवाद मतलब उसकी प्रशंसा होना, अर्थवाद मतलब प्रशंसा करना। और उपपत्ति मतलब युक्ति के द्वारा उसको जानना। ये 6 चीजें हो गई। हमारे वेदांत में इसकी बड़ी महिमा है। जब भी कोई बात होती है तो षडविध तात्पर्य निर्णायक लिंग इसको बोलते हैं। यदि इसके बिना कोई बात हो तो बिना सिर पैर की बातों को, जैसे हम लोग व्यवहार में भी महत्व तो नहीं देते। कुछ लोगों की आदत होती है चलते फिरते ऐसे बात शुरू कर देते हैं। एक आदमी था ऐसे, जब गाड़ी में बैठे बोले, इस गाड़ी का नाम क्या है, इस गाड़ी में जो कलर है इस कलर को क्या बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई लगन में हगन होता है, कि जैसे हर चीज के लिए हम मुहूर्त निकालते हैं, लगन निकालते हैं, उसी प्रकार से देश काल परिस्थिति के अनुसार जो बात की जाए। चलते फिरते यात्रा में चल रहे, मान लो अभी आप यात्रा की तैयारी में हो, ट्रेन में प्लेन में बैठने की तैयारी में, उस समय कोई बोले हमको थोड़ा वेदांत सार सुना दो, तो ये तो वही वाली बात हो गई, मजाक उड़ा रहे। जैसे कई ट्रेन में मिलते हैं लोग, महाराज कुछ ज्ञान की बात करो, मैंने कहा फालतू में ही मिला तुमको, ज्ञान की बात क्या करे। उनको ये लगता है कि बैठे थे कुछ न कुछ बोले, उसको कहो कि ज्ञान की बात तो है कि चुप रहो, बस बोलो मत, यही ज्ञान है। अब इसका तो उत्तर यही होना चाहिए, क्योंकि जब कुछ किया ही नहीं, साधन चतुष्टय संपन्न की बात पूछेंगे वो क्या बोलेगा। तो ज्ञान की बात करो, कुछ बोलो। जैसे हम बिना सिर पैर की बात व्यवहार में करते हैं तो वह व्यक्ति हंसी का पात्र बनता है। अपि शास्त्रे सुकुशला लोकाचार विवर्जिता। हम भले ही शास्त्रों में कुशल हो जाएं, लेकिन लौकिक आचार व्यवहार से यदि रहित हैं तो सर्वे वही हास्यताम यान्ति, वह सर्वत्र हंसी का पात्र बनता है। यथाते मूर्ख पंडिता, जैसे पंडितों की सभा में मूर्ख व्यक्ति हंसी का पात्र बनता है, ठीक उसी प्रकार से अव्यवहारिक व्यक्ति की भी सर्वत्र हंसी उड़ती है, हंसी उड़ाते हैं लोग। इसलिए उपक्रमों और उपसंहार के माध्यम से समझ लेना चाहिए कि जिस विषय का प्रतिपादन किया जा रहा है वह हमारे काम का भी होना चाहिए। आज जब शुरू किया तो उसी पर समापन भी हो। तो षडविध तात्पर्य निर्णायक लिंग, ये श्लोक याद कर लेंगे तो ध्यान में बैठेगा। और इसके अर्थ का बार बार चिंतन मनन करना है कि जहां से प्रारंभ हो वहीं पर समापन हो। 1, अभ्यास, बार बार उस बात को कहे। 2, उपनिषद के द्वारा ही जानने के योग्य है। 3, विदेह मुक्ति रूपी जो मोक्ष है यही फल है। चार जो हम जानने जा रहे हैं उसकी प्रशंसा करना, पांच और युक्ति दिमाग लड़ाना, मनन करना, लक्षण बताना, ये छह हो गए। अब अर्थवाद भी किस रूप से हम जान सकते हैं उसके लिए आचार्य यहां बता रहे हैं। पृष्ठ संख्या 45 में अभी थोड़ा है नीचे वाले। सृष्टि स्थिति प्रलय प्रवेश संयमन तत्वम पदार्थ परिशोधन फल प्रतिपादका इति सप्त अर्थवादाहा। जब सृष्टि स्थिति और प्रलय, उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना, प्रवेश परमात्मा का जो हम जीवों में प्रवेश होना और अंदर रह करके सबका अंतर्यमन संयमन करना अंतर्यामी रूप से, एषो अंतर्यामी एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ, ये मांडूक उपनिषद में भी आता है। पांच हो गए, सृष्टि एक, स्थिति दो, प्रलय तीन, प्रवेश चार, संयमनम पांच, और तत् और त्वम पदार्थ का जो ये शोधन, ये सात जो हैं, और फल प्रतिपादन, ये सात हो गए अर्थवाद। इस अर्थवाद के द्वारा महावाक्य का जो अर्थ है जीव और ब्रह्म की एकता बताना, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ये जो प्रतिपादन किया जाता है यही इसकी प्रशंसा है। और इसके लिए सृष्टि स्थिति लय प्रवेश संयमन तत्वम पदार्थ परिशोधन और फल प्रतिपादन, जहां जहां ये हो समझ लेना चाहिए यहां जीव और ब्रह्म की एकता बताना ही इसका उद्देश्य है। उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। तैत्तरीयोपनिषद का ये मंत्र है, तत्र तस्माद्वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूत। तस्माद् ब्रह्मण, एतस्माद् उस ब्रह्म से अर्थात आत्मा से, आकाश संभूत आकाश उत्पन्न हुआ। फिर क्रम समझ में आ जाएगा, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, वनस्पति अन्न, उसके रस के रूप में हम लोग जो यहां दिख रहे हैं, ये सब कहां से आए, परमात्मा ही ये प्रकट हुआ। इसलिए हम ब्रह्म है बोलने में कोई हर्जा नहीं है, संकोच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेमपुरी में ही बोलना है, बाहर मत बोलना। हाँ, बाहर तो नाम रूप से व्यवहार चलेगा, तो पारमार्थिक बातें हो गई, व्यवहार में नहीं चल सकता। इत्याद्याः सृष्ट्यादि अर्थवाद रूपाः श्रुतयः आकाशादेः सर्वस्य ब्रह्मण एव उत्पत्तेः। सृष्टि आदि का जो वर्णन मिलता है उपनिषद में, इससे ये पता चला कि ये सब के सब ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, अर्थात ब्रह्म ही इस रूप में प्रकट होते हैं। खेत में गेहूं दिखने पर भी हमें उसमें रोटी आदि का अंदाजा नहीं लगता है, लेकिन रोटी बनने के बाद भी खेत में लगे हुए गेहूं का स्मरण रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कोई बोले कि आपने अभी तक कितने क्विंटल गेहूं का पार लगाया, हाँ कोई बता सकता है? खाए जा रहे, रोटी बनी खाए, फिर वो जमीन में गया, मल आदि बनकर पुनः उत्पत्ति हुई, गेहूं बन के आया, फिर खाए। सर्किल तो वही है जो चल रहा है, चक्कर बोलते हैं जिसको, चक्र। लेकिन कितने गेहूं खाए बता नहीं सकते, लेकिन खाए जरूर हैं तो मालूम है, और अभी कितने बोरी को पार लगाने के लिए रहेंगे। जब परमाणु परीक्षण हुआ, भारत सरकार ने परमाणु बम का परीक्षण किया, तो बाकी देश वालों ने पूछा कि भारत को कितने बम चाहिए, बोले इसकी कोई समय सीमा नहीं तय की जा सकती, क्या पता कितने जरूरत पड़ जाए। तो हम लोगों को अपने अंदाज लगा लीजिए, दिन में दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी जो भी खाते हैं, शाम को भी उतने ही खाते हैं। कोई 50 साल का हो गया, अब 50 साल बाकी एक्स्ट्रा रख लो 100 साल के हिसाब से, तो कितने गेहूं होना चाहिए हमारे पास, या कितने गेहूं खाएंगे, इसका हिसाब निकालिए। उसी हिसाब से चावल, मसाला, सब्जी सबका आंकड़ा लगा लीजिए। इससे भी थोड़ा मन में संतोष तो होता होगा, नहीं होगा? इतने से अपना काम चल जाएगा। लेकिन बात यह है ना, अपने से ज्यादा चिंता दूसरे की होती है, और दूसरे की चिंता करना भी अच्छी बात है, लेकिन चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंतन ये करो कि हमको परमात्मा ने निमित्त बनाया, मेरे माध्यम से किसी को रोटी चावल मिल रहा, अच्छी बात है, और नहीं भी मिले तो उसके लिए कोई दुख मनाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये जो है, सब के सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, सृष्टि के प्रक्रिया से समझ में आता है। और तस्मिन एव अवस्थानात पुनः तत्रैव लयात, जहां से ये उत्पन्न हुआ वहीं पर ये सब जाके लीन भी होते हैं। कोई भी कार्य अपने कारण में ही लीन होता है, ये ध्यान रखने की बात है। मिट्टी से बनी हुई चीज मिट्टी में ही लीन होती है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा, ये हो गया कार्य, और मिट्टी हो गई कारण। घड़ा फूटने के बाद कहां जाता है? मिट्टी में ही मिल जाता है। इसलिए हम लोग बात बात में बोलते, तुमने सब किया कराया, मिट्टी में मिला दिया। भैंस गई पानी में, मिट्टी का कारण जल है, तो मिट्टी जाएगी कहां? जल में। सब कुछ जल भी क्या हो गया? जल गया। कहां जल गया? बोले आग में गया। पानी उबालते उबालते छोड़ दो तो धीरे धीरे बर्तन ही सूख जाएगा। जल जल गया, कहां गया? जल में गया। तो जल गया मतलब अग्नि में गया, इसलिए जल गया बोलते हैं। और आग बुझ गई, वायु में लीन हो गए। यहां तो सांस लेने की भी जगह नहीं है, मतलब जो वायु श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है उसके लिए स्पेस चाहिए। कोई जलते हुए दीपक के ऊपर हवा के बिना जाली वाले बर्तन रख दो तो वो दीपक बुझ जाएगा, और जालीदार बर्तन रखो तो हवा से बच भी जाएगा और हवा भी लगेगी तो उससे दीपक जलता रहेगा। जिस आकाश के माध्यम से वायु का रहना दिखता है, उसी आकाश के अभाव में वायु का नहीं रहना भी तो होता है। इससे पता चलता है आकाश का कार्य जो वायु, और वायु का कारण जो आकाश, वह वायु किसमें लीन हो गई? आकाश में। वायु का मतलब है वातीति, वायु जो बहे उसका नाम है वायु, उसी से बनता है वातीति वायु। फिर प्राण वायु अलग अलग विशेषण जोड़ दिया। आकाश का मतलब व्यापक। आकाशस्थानीय कौन है? परमात्मा, आत्मा। आकाशस्थल लिंगात, आकाश किसकी पहचान है? बोले ब्रह्म की पहचान है। ब्रह्म को बताने के लिए, ब्रह्म की व्यापकता को समझाने के लिए आकाश का दृष्टांत दिया जाता है, लेकिन आकाश ही ब्रह्म है नहीं कह सकते। ब्रह्म जो है आकाश की तरह है, आकाश के माध्यम से ब्रह्म का ज्ञान कराया जाता है, ब्रह्म को बताया जाता है। तो कहते फिर आकाश को ही ब्रह्म क्यों नहीं कह देते? बोले आकाश विनाशी है, ब्रह्म अविनाशी है। इसलिए दृष्टांत के लिए तो ठीक है, लेकिन ब्रह्म आकाश ही ब्रह्म है ये कहना उचित नहीं होगा। और इस प्रकार से आकाश भी अपने कारणभूत महतत्व में, अहंकार में, और वह महतत्व अपने प्रकृति में, प्रकृति अपने कारण ब्रह्म में। इस तरह से लय प्रक्रिया के माध्यम से मृद उत्पत्ति, मृद स्थिति, मृद लयात्मकस्य घटादेहे। घड़ा बना मिट्टी से, जब घड़े के रूप में दिखा तब भी मिट्टी में ही था, मिट्टी रूप में ही दिखा घड़ा, और जब घड़ा फूट करके समाप्त हो गया तो मिट्टी में ही मिला। घड़े का मिट्टी के बिना एक क्षण के लिए भी अस्तित्व नहीं हो सकता, उत्पत्ति काल में, घट काल में और घट समाप्ति काल में मिट्टी के सिवाय वहां कोई दूसरी वस्तु नहीं होती, उसी प्रकार से हम लोग जो यहां दिख रहे हैं, मां के गर्भ में आए, गर्भ में आने से पहले, गर्भ से बाहर आने के बाद, इस समय जो जीवन चल रहा है और जब राम नाम सत्य होगा उसके बाद भी सर्वत्र कौन रहेंगे? वही है परमात्मा, उनकी सत्ता है। ये उपाधिक है, शरीर पहले नहीं था, अभी है, आगे भी नहीं रहेगा। जैसे मिट्टी में बनने वाला घड़ा पहले भी नहीं था, बीच में दिख रहा और आगे भी नहीं रहेगा, घट के समान ही हम लोग भी तो हैं। इसलिए घड़े का लक्षण नहीं करते। घड़ा कैसा होता है? हाँ, मुंह खुला हो, गला छोटा हो, पेट गोल हो, उसको क्या बोलते हैं? घड़ा। हम लोग भी क्या है यहां? घट घट वासी राम रमैया, सब घट में बसा हुआ परमात्मा, ये सब के सब हम लोग क्या है यहां? घड़े हैं। बार मत बोलना हम घड़े हैं। तो मृद उत्पत्ति स्थिति लयात्मकस्य घटादेहे मृद अभेदवत्, जैसे हुआ मिट्टी से अभेद है, अभिन्न है, उसी प्रकार से कारण ब्रह्म मात्रताम अवगमयन्त्यः महावाक्योक्तम ब्रह्मणो अद्वितीयत्वं संभावयामासुः। तात्विक दृष्टि बनाना ही ज्ञान का फल है। घड़े को देखते हुए मिट्टी का स्मरण करना, यही है अपनी स्मृति। हम लोग अपने शरीर को तो देखते हैं, लेकिन शरीर किसकी वजह से है, उधर दृष्टि चली जाए तो हो गया ज्ञान। अध्यास की तरफ सबका ध्यान जाता है, लेकिन अधिष्ठान की तरफ किसी का ध्यान जा नहीं रहा है। बल्कि अधिष्ठान ही अध्यास के कारण, जिसको हम विवर्त बोलते हैं, विपरीत रूप से दिखने लगा। रस्सी ही सांप के रूप में दिख रही है, लेकिन सांप की तरफ दृष्टि जाने से रस्सी का ध्यान हट गया। इस बात को समझाने के लिए आचार्य ने एक बहुत स्तोत्र, सुंदर स्तोत्र की रचना की, जिसका नाम है अद्वैत पंचरत्नम। अद्वैत पंचरत्न में इस बात को ही आचार्य ने बताया विस्तार से। उसको आप लोग पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि जो सर्प रस्सी में दिखा वह रस्सी से भिन्न नहीं है। ये तो ज्ञान होने के बाद, किसका ज्ञान? रस्सी के ज्ञान होने के बाद। और रस्सी का ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक सर्प का ज्ञान होता रहता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक जगत ब्रह्म से अलग दिख रहा है तो ब्रह्म नहीं दिखता, और जब ब्रह्म दिखने लगता है तो फिर जगत नाम की चीज रह नहीं जाती, रफू चक्कर हो गया। हर जगह ये दृष्टांत घट जाता है। बस इतनी सी दृष्टि बनाने की बात है। जो है वो क्षण क्षण में है, कण कण में है, ये दृष्टि बनाना है। भागवत में जैसे भगवान ने नहीं किया, वो ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करने के लिए बछड़े आदि का जो अपहरण किया था, उन सभी रूपों में भगवान ने अपने आप को व्यक्त करके दिखा दिया। वहां तो चलो बछड़े और ग्वाल बाल चेतन रूप थे, द्रौपदी के साड़ी का रूप भी धारण करने वाले हैं, जो एक पत्ते खा करके सबके अंदर की भूख मिटाने वाले हैं, जो इससे पता चलता है। जो ये किसमें लिखा है, खंडन खंड खाद्य में कहा, वहां पर ये दृष्टांत दिया है, द्रौपदी शाकम आस्वाद्य त्रिलोकी येन तर्पिता तज्जीव ब्रह्मणोरैक्यम साक्षी ब्रह्मैव नो हरि। तज्जीव ब्रह्मणो ऐक्यम, जीव और ब्रह्म की जो एकता है कैसे है? तो द्रौपदी शाकम आस्वाद्य, द्रौपदी के बर्तन में लगे हुए साग के पत्ते खा करके, त्रिलोकी ये न तर्पिता, जिस त्रिलोकी के द्वारा उनके तृप्ति से दुर्वासा जी के जितने भी शिष्य मंडली थी सबका पेट भर गया। और उससे पहले जब निमंत्रण दिया भोजन के लिए, पांडवों का भोजन शायद हो गया था, उसके बाद निमंत्रण दे दिया कि भोजन करके जाए, दुर्वासा जी को जानबूझ करके दुर्योधन ने भेजा था। भीम अंदर ही अंदर बुदबुदाने लगे युधिष्ठिर के ऊपर कि हमेशा धर्म संकट में डालते हैं, स्वयं तो धर्मराज कहलाते लेकिन दूसरे को अधर्म करने के लिए मजबूर कर देते। धर्मराज युधिष्ठिर तो अजात शत्रु थे ना, उनका कोई शत्रु हुआ ही नहीं, मतलब उनकी तरफ से उन्होंने स्वयं किसी को शत्रु नहीं बनाया। दुर्योधन ने किया होगा अपनी तरफ से, महाराज युधिष्ठिर ने नहीं किया। ऐसा जीवन हो जिसका कोई शत्रु ही न हो उसको बोलते अजात शत्रु। इसलिए महाभारत में युधिष्ठिर के नाम में विशेषण जोड़ा गया, धर्मराज युधिष्ठिर और अजात शत्रु युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर का यदि अर्थ किया जाए तो युद्ध में स्थिर हो, जो स्थित हो यही युधिष्ठिर होगा। व्याकरण के हिसाब से शाब्दिक अर्थ करे तो हो सकता है धर्म युद्ध के लिए ही जो हमेशा तत्पर रहे वही युधिष्ठिर है। तो जब निमंत्रण दे दिया भोजन करके जाए तो भीम बुदबुदाने लगे, भोजन हो गया, इतने लोगों को निमंत्रण दे रहे खिलाएंगे कैसे। तो भीम से रहा नहीं गया तो पूछ ही लिया कैसे खिलाएंगे। युधिष्ठिर बोले उसकी चिंता मत करो, वो सब हो जाएगा, क्योंकि पता था कि भगवान ही है हर विपत्ति में रक्षा करने वाले। और उधर दुर्वासा जी बड़े लंबे चौड़े टाइम लगा दिए, नहाना धोना सब शुरू किया, संध्या वंदन, तो पेट भर गया था ना, भूखे रहते तो जल्दी जल्दी निपटाते। तो भीम जब गए, युधिष्ठिर ने भेजा, अच्छा भगवान ने जब खा लिया द्रौपदी का उपत्ता तो भीम को कहा जाओ उनको बुला के लाओ। तो दुर्वासा जी ने जब देखा भीम आ रहे तो अपने शिष्य मंडली से कहा तुम लोगों किसी खाने की इच्छा है। बोले हम सबका पेट भरा हुआ है। दुर्वासा जी को समझ में आ गया मामला जो है कुछ। तो भीम से बोला वहां कृष्ण आए हैं क्या। बोले हाँ आए हैं, तो हम उनको यहीं से प्रणाम करते हैं, बाद में मिलेंगे। और वहां से चलते बने। त्रिलोकी ये न तर पिता, जिनके द्वारा सब तृप्त हो जाते हैं। तज्जीव ब्रह्मणो रेक्यम साक्षी ब्रह्मैव नो हरि। हम लोग भी अपने आप के जो साक्षी है ना, अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही जवाब दे रहा है ये अच्छा है ये बुरा है। हम गलत करते अंदर से आवाज आती कि हमसे गलती हुई है। और जो अच्छा होता है उसकी प्रसन्नता जब अंदर होती है, इसमें भी उसी का साक्षी बना है। दिन रात सबका ही अनुभव है, फिर भी थोड़ी देर के लिए उससे दृष्टि हटी तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जगत दिख तो रहा है लेकिन ब्रह्म के रूप में नहीं दिखने के कारण हम इसी जगत से फिर भागने की कोशिश करते हैं। और भाग के जाएंगे कहां भागोगे, इसका कोई उपाय है। जो हम हमारे पहुंचने से पहले पहुंचा हुआ है, जहां से हम चलते वहां से वही चलता है वही चलाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर की भावना रखे कि सर्वत्र वही ब्रह्म है। तो जैसे मिट्टी का घड़े से अभिन्न संबंध है, कभी भी घड़ा मिट्टी के बिना नहीं दिख सकता, उसी प्रकार से जो हम लोग दिख रहे हैं उस परमात्मा की सत्ता से ही हम लोग हैं। हमारी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यदि अलग मानते हैं तो ये अज्ञान का ही फल माना जाएगा। कारण ब्रह्म मात्रताम, सबका कारण एकमात्र ब्रह्म ही है, ऐसा जो जानते हैं। महावाक्य उक्तम, महावाक्य के द्वारा जो बताया गया, ब्रह्मणो अद्वितीयत्वम, ब्रह्म की जो अद्वितीयता है, ये महावाक्य के द्वारा हमें ज्ञान होता है, जिसमें सृष्टि स्थिति लय प्रवेश संयमन महावाक्यार्थ का प्रतिपादन और फल प्रतिपादन, ये सात चीजें जहां हो ये अर्थवाद का स्वरूप है। ये अर्थवाद का विचार चल रहा है यहां पर। और भी उस परमात्मा की प्रशंसा करते हुए श्रुति का उदाहरण दे रहे तथा उसी प्रकार से स एतम एव सीमानम विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत। उस ने इस मूर्धा को विदीर्ण करके और इस शरीर में प्रवेश किया, ऐसा आता है। जबकि शरीर भी बना उसी के सत्ता से, ऐसा नहीं कि शरीर अलग था। लेकिन शरीर को हम लोग जड़ बोलते हैं। इसमें जो चेतन रूप से परमेश्वर ने प्रवेश किया, कल शाम को भागवत में ये प्रसंग आया था कि चतुश्लोकी भागवत में जो आता है प्रविष्टान्य प्रविष्टानी तथा तेषु न तेष्वम, शरीर के दृष्टि से आत्मा का प्रवेश भी स्वीकार किया जाता है और आत्मा के दृष्टि से आत्मा का प्रवेश नहीं हुआ ये भी माना जाता है। आत्मदृष्टि से अनुप्रवेश नहीं है और शरीर के दृष्टि से अनुप्रवेश है। इसके लिए दूसरी श्रुति है तत् सृष्ट्वा तद एव अनुप्राविशत, उसने सृष्टि बनाई और उसी में उसने अनुप्रवेश किया, प्रवेश किया। अनुप्रवेश का मतलब ही होता है साथ साथ ही प्रवेश करना। रोटी में आटे का प्रवेश, जलेबी में मैदे का प्रवेश, कुर्सी में लकड़ी का प्रवेश, आभूषण में सुवर्ण का प्रवेश, घड़े में मिट्टी का प्रवेश, ये सब के सब क्या है? अनुप्रवेश। साथ साथ ही होता है। कोई कहे घड़ा बना पहले बाद में मिट्टी डाली गई, जैसे ये बात संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से शरीर बन करके कहीं पड़ा हुआ था और फिर परमात्मा ने उसमें प्रवेश किया, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ प्रवेश का रास्ता तो बताना पड़ेगा ना। तो शास्त्र में बता रहे हैं कि स एतम एव सीमानम विदार्य। हम लोगों का जो ये शरीर है ठीक आधा आधा है सारा मामला, और यहां पर आकर के जुड़ता है। नीचे तो हम लोग पैर आदि को जोड़ते हैं, फिर अलग भी हो जाता है, लेकिन आप पैर से ऊपर की ओर देखो तो स्थायी रूप से जुड़ा हुआ मामला कहां दिख रहा है? यहीं पर होता है। बाकी जगह हार्ट आदि का भी ऑपरेशन होगा, आधा आधा कर सकते हैं, फिर भी जीवित रह सकता है, लेकिन यहां पर यदि हो जाए ऐसा तो मामला खत्म। वो तो फिर अंतिम में ही होगा, दाह संस्कार के बाद जो कपाल क्रिया करते थे ना, कपाल क्रिया वही तो है। जीते जी जिस माता पिता को तू भी बोल देवे बेटा, तो समाज कहता है कैसा है नालायक, अपने मां बाप का अपमान करता है। और शरीर छूटने के बाद जब जलाते हैं तो वही समाज कहता है कि अब लो बांस का डंडा और कपाल क्रिया करो। कपाल क्रिया मतलब मस्तक फोड़ना, कहीं जीव अंदर ना अटक के रह जाए। एक विधान है, जीव तो क्या अटकना है, प्राण निकला तो गया। और प्राण निकलने के भी बहुत सुंदर बताया है वहां, कहां से प्राण निकलने पर क्या गति होती है, खास करके इससे ऊपर ऊपर निकले ना। नवद्वारे पुरे देही पुरम एकादश द्वारम अजस्या वक्रचेत सह, ये कठोपनिषद में है। और जो नवद्वारे पुरे देही ये गीता में, तो अनुष्ठायन सोचते विमुक्तश्च विमुच्यते एतद् वै तत्। इसके द्वारा अनुष्ठान करे, प्रत्येक जगह हमें परमात्मा का निवास है और जब निकलता है ये, मुंह से निकले तो मुंह खुला रह जाता है, आंख से निकले तो आंखें खुली रह जाती है, कमर से नीचे निकलना अच्छा नहीं मानते, इससे ऊपर से निकलता है तो अच्छा माना जाता है। और ये जो है मूर्धन्या धायात्मन प्राणम आस्थितो योग धारणम, ये जो गीता में आया मूर्धा को विदीर्ण करके निकलना, जिस रास्ते से प्रवेश कर किया उसी रास्ते से यदि निकला तो बहुत ही उत्तम बात हो गई। जैसे कमरे में प्रवेश करते हैं जिस दरवाजे से और उसी दरवाजे से निकलते हैं तो अच्छी बात है। कोई कहे नहीं जी वो तो खिड़की तोड़ के निकला, तो जैसे वहां उसकी बदनामी होगी, या वो कहेंगे खिड़की भी नहीं तोड़ी उसने, तो छत तोड़ करके सीधे नीचे उतरा, तो वो वाली बात ना हो। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। उसने जीव के माध्यम से, भागवत में जैसे आया अनेक जीवों की उत्पत्ति की परमेश्वर ने, लेकिन ऐसा लगा कि इसके माध्यम से भी हम अपने आप को नहीं जान सकते, तो सबसे सुंदर कृति यदि हुआ है तो मनुष्य की कृति है। मनुष्य की आकृति बनाने के बाद परमेश्वर को लगा कि ये हमको जानने में समर्थ हो सकता है, अर्थात इस शरीर के माध्यम से हम अपने आप को जान सकते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ बताया, इसमें परमात्मा को जानने की क्षमता है, सामर्थ्य है, बाकी जीवों में बाकी प्राणियों में ये योग्यता नहीं है, इसलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। अब भला बताइए, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए यदि आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया, केवल मनुष्य बनकर के आए और चले गए, तो वही वाली बात है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। केवल ये इस शरीर को ही हृष्ट पुष्ट किया, न कोई ज्ञान है, न कोई तप है, न कोई त्याग है, तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम, दान पुण्य कुछ भी नहीं किया, न ज्ञानम शीलम कोई सज्जनता कोई कला आदि भी नहीं है जिसमें, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणों कोई गुण भी नहीं है, और गुणों से भरा हुआ है, न धर्म कोई धर्म आदि का आचरण भी नहीं किया, ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता, वो पृथ्वी के ऊपर एक भार है, बोझा है, मनुष्य के रूप में चलते फिरते दो पैर वाले दो टांग वाला जानवर, चतुष्पाद पशु तो प्रसिद्ध है, लेकिन दो पैर वाले पशुओं में फिर उस व्यक्ति की गिनती होती है जिनमें एक भी ये जो लक्षण बताया नौ, न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। इसलिए वो आप लोगों को सुनाया था ना पहले, याद आ जाएगा अभी बताऊंगा, तो केदारनाथ की यात्रा में जब जाते हैं पालकी वाले ढोते हैं ना आपस में, तो बोलते बाबूजी ये चाय की दुकान आ गई, अब चाय पियो, हम लोग भी चाय पीते हैं। अब पालकी वाले सब अपने उनके जो बटालियन है अलग होती है, वहां सब बैठ के आपस में बात करते, भाई तेरा मुर्दा कितने का है। हाँ, उनकी दृष्टि में पालकी में बैठने वाला आदमी क्या दिखता है, मुर्दा। तेरा मुर्दा कितने का है, बोले 5,000 के। तुम्हारा, बोले 11,000। इतना होगा, अरे दूर से दिखाता देखो कितने क्विंटल का है वो बैठा है सामने। दूसरे के कंधे पे जब जाने लग जाओ तो समझ लो क्या हो गए हो, मुर्दा। अंतर इतना ही है कि एक श्मशान घाट ले जाते हैं और वो बद्री केदारनाथ ले जाते हैं। अब तो बम्बे में भी खत्म हो गया ना सिस्टम, कोई जाते ले जाते अर्थी में, गाड़ी में ले जाते, थोड़े देर तो देते होंगे ना कंधा गाड़ी से उतारने के बाद ऐसा। चलो क्या बढ़िया है, अच्छा तो होता आदमी अपने आप चल के पहुंच जाता, होता नहीं ना, यही तो है, चार आदमी की जरूरत पड़ती है, अकेला भी कोई खींच के ले जाए वो भी ठीक नहीं, कंधे दिया, और कंधा देने का बड़ा महत्व है, जैसे यज्ञ में कुछ करते हैं ना, तो ये यज्ञ है, अंत्येष्टि क्रिया करने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत भी कंधा देने को मिल जाए तो बड़ा पुण्य माना गया, देना चाहिए। अब आजकल तो यदि बेटा आग लेके भी चले आगे आगे तो मोबाइल पे बोलता अभी पिताजी को जलाने जा रहा हूं, बाद में बात करूंगा, ये तो अभी लोगों में हो गया, कोई प्रेम नहीं, बस सब जगह समझ रहे हैं कि निपटाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि हम स्वयं निपट जाएंगे। बड़े दुख की बात है ये सब। तो ऐसा शरीर लेकर के जो हम लोग चल फिर रहे हैं, लेकिन इस चेतन की इतनी महिमा है, जो 100 साल तक हम टिका के रखते हैं, अर्थात टिकता है उसके माध्यम से, उसके प्राण पखेरु निकल जाने के बाद एक दिन दो दिन रखना भी मुश्किल होता है। कल कोई माता जी बता रही थी राजस्थान आदि में पुराने समय में, अभी हो गया ना बर्फ आदि, चलो भाई एक दिन दो दिन रखो, उस समय तो ये सब साधन होते नहीं थे, तो एक दिन में शरीर छूटा तो सूर्यास्त से पहले पहले ही क्रिया कर देते थे, ताकि बासी भी ना हो और रखना भी मुश्किल होता था। अभी तो 15 दिन महीना दो दो महीना भी रखते हैं। तथा यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वी अंतरो यमयति एष त आत्मा अंतर्यामी अमृत इत्यादि नियमन श्रुतिश्च अत्यंत भेदे नियम्य नियामक भाव अनुपत्ते तयो अभेदम एव संभावयति। ये जो बात है ना बहुत अच्छी बात है। श्रुतियों में बताया गया आत्मा को कि यह अंतर्यामी है, समस्त प्रपंच का नियामक है। संसार की जो व्यवस्था चल रही है ना, हम लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, वास्तव में हम लोग तो उसी परमात्मा के माध्यम हैं। हमारे द्वारा वो अपनी व्यवस्था को चलवाते हैं और जितना उनको हमसे चलवाना है उतना वो अपने हाथ में रख हमसे चलवाते हैं, बाकी अपने हाथ में रखते हैं। बारिश हुई, पानी मिला, किसान को लगा खेती मैंने किया, और यदि उनको प्रलय लाना है, बाढ़ आ गई, खेत के सारे फसल बह गए, क्या कर लिया किसान ने? हल जोतना, खेत में बीज बोना, पौधे लगाना किसान के हाथ में है, उस रूप में भी परमात्मा ही है। लेकिन किसान अपने को परमात्मा से अलग मान करके भूल कर बैठता है और इसलिए उस खेती के माध्यम से सुखी और दुखी होता है। फसल अच्छी होती है तो खुश होता है, उस समय में भी उसी परमात्मा को याद करे कि हे प्रभु, हमने तो 1 किलो बीज बोया था और आपने तो क्विंटल भर दिया, क्या आपकी कृपा है। लेकिन मैंने कितना परिश्रम किया, ये यूरिया डाला, वो खाद डाला, तभी इतना हुआ। भगवान आकर के कहे ना कि उसमें मैंने तुम्हारी मदद की, तो बोले आप उस समय दिखे क्यों नहीं, अब फसल तैयार हो गई तो अब बताने के लिए आए। इसलिए वह परमात्मा प्रभु छिप करके ही सारा काम कर रहे हैं, सामने कभी आते नहीं है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसे सुख के क्षण का अनुभव तो होता ही है, जिस समय लगता है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। उस समय यदि परमात्मा को याद करेंगे तो मुझे लगता है दुख के घड़ी में भी याद करना उचित ही होगा। लेकिन होता क्या है, सुख का क्षण सबके जीवन में आने पर भी उस समय परमात्मा को याद करना सबके वश की बात नहीं है। वहां हमको ऐसा लगता है कि ये हमारे अपने पुरुषार्थ का ही फल है, प्रभु की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए जब दुख की घड़ी आए और उस समय यदि भगवान को याद करो, तो भगवान को इतना तो मालूम है कि जब सुख की घड़ी थी तब भी इसने हमको याद किया था और अभी दुख की घड़ी आई तभी ये मुझे याद कर रहा है। लेकिन सुख में सुमिरण कहां करे, कोई न करे, दुख में सुमिरण सब करे और दुख में सुख में करे न कोई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, हरि शरणाष्टकम में एक श्लोक आता है, उसमें आया दुखम जरा जननजम विविधाश्च रोगा काकाश्व सूकर जनिर निरये च पात ते विस्मृते फलमिदम विततम ही लोके तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीनबंधो। हे दीनबंधो, हम आपकी शरण लेते हैं। दुखम जरा जननजम विविधाश्च रोगा, दुख है ये सब, जन्म लेना, बीमारियों का सामना करना। स्वास्थ्य ठीक है तो हम लोगों को इधर कुछ नहीं लगता, जैसे पता चला कुछ हुआ, ऑपरेशन होगा, डॉक्टर काटेंगे, चीर फाड़ करेंगे, उस वेदना को याद करके ही रूंगटे खड़े हो जाते हैं कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। किसी प्राणी की हत्या करते ऐसी वेदना अपने मन में होती है क्या? और अपने शरीर के साथ जब होता है तो उस पीड़ा का अनुभव करिए कि कितना भयंकर होता है वो। दुखम जरा जननजम विविधाश्च रोगा, काक अश्व सूकर कौवा बनना, घोड़े बनना, सुअर बनना, जनिर निरये चपात, ऐसे योनियों में जन्म लेना पड़ता है, निरये चपात नरक में जाना पड़ता है। क्यों? ते विस्मृता, आपके भूल जाने का ये सब फल है। इसलिए हे प्रभु, हमेशा आपकी स्मृति बनी रहे, आपको ही याद करूं। तो उसमें आता है ना, आपत सुमगन स्मरणम त्वदीयम करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी, नैतच्छठत्वं मम भावयेता क्षुधा त्रिषार्ता जननीम स्मरंती। देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र में आचार्य शंकर ये बोलते हैं, आपत सुमग्न, जब आपत्तियों में हम पड़ जाते हैं, डूब जाते हैं, कहीं रास्ता नहीं दिखाई देता है, डूबते को तिनके का सहारा, जब आपको खतरा नहीं है डूबने का तो नाव की कीमत क्या होती हमें नहीं पता, लेकिन जब हम डूबने लगते हैं, नाव नहीं दिखती तो वहां कोई तिनका भी दिखता है तो लगता है शायद इसी को पकड़ के हम नदी पार कर लेंगे। तो डूबते के तिनके का सहारा, ये मुहावरा ऐसे नहीं बना है। यदि वहां नाव नाव नहीं दिखी और कुछ भी दिखता है, डंडा भी हिलता हुआ ना, तो लगता है इसको पकड़ के शायद पार हो जाएंगे। आपत सुमग्न स्मरणम त्वदीयम, विपत्ति में जब डूबते हैं तो त्वदीयम स्मरणम, आपका स्मरण होता है। स्मरणम करोमि, त्वदीयम स्मरणम करोमि दुर्गे, हे दुर्गे भगवती, आपका नाम ही दुर्गा है, कठिनाइयों से पार लगाने वाली, दुर्गम को भी सुगम बनाने वाली, क्योंकि आप करुणारणव ईशी, करुणारणवेशी, करुणा के सागर हैं। न एतत षठत्वम मम भाव ये था, ये जो मेरी षठता है, जो हमने कभी आपको याद नहीं किया, इसको आप अपने मन में मत लीजिए। हम लोग क्या सोचते हैं, जब याद करना चाहिए तब तो याद किया नहीं, अब मतलब हुआ तो याद कर रहा है, जाओ मरो। लेकिन भगवती ऐसा कर सकती है क्या? मां जैसे अपने संतान का कभी परित्याग नहीं कर सकती, क्योंकि मां आखिर मां होती है। न एतत षठत्व मम भाव एता, हे मां, आप मेरी इस षठता को अपने मन में मत लीजिए। क्षुधा त्रिषार्ता, जब व्यक्ति भूख और प्यास से पीड़ित होता है, तो जैसे बच्चा घर में किसको पुकारता है, मां मां भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी चाहिए, जैसे बच्चे मां को पुकारते हैं भूख और प्यास लगने पर, ऐसे जो मैं विपत्ति में पड़ गया, मैं आखिर आपके सिवाय किसको पुकारूं, आपके सिवाय मेरा है भी कौन। ये है ते विस्मृते फलमिदम विततम ही लोके, जो आपको भूल जाते हैं उनको तो हमेशा विपत्तियों का ही सामना करना पड़ता है, और जिसने आपको याद किया फिर तो याद का उल्टा कर दो, तो आप दया तो है ही आपके अंदर, दयालु हो। हमारा काम है याद करना, तब उनका काम क्या हो जाता है, दया करना। दयालु तो हमेशा ही है वो, लेकिन थोड़ा एक कदम हम चलते हैं तो 100 कदम वो हमारी ओर चल के आते हैं, लेकिन प्रयास तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। ऐसे हम सब के अंदर अंतर्यामी के रूप में विराजमान जो परमात्मा, यहां बोलते उसने नियम और नियामक का ये जो संबंध है कहां बनता है, शास्य और शासक, ये भी हम अपने जातियों में ही तो चलाते हैं। मनुष्य ही मनुष्य के ऊपर शासन करता है, मनुष्य ही शासक बनता है और मनुष्य ही शासित होता है। शास्य और शासक का भाव, नियम और नियामक का भाव, ये अपने सजातियों में ही होता है। पशु आदि को तुम थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करके कर देते हैं, मदारी बंदर को नचा लेता है तो हमें कितने आश्चर्य होता है, देख करके बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है। वो तो उसको इतना डंडा मार मार करके सिखाया है ना, कि बैठ के नाम से सुनते ही सोचता है कि नहीं बैठूंगा, डंडा मार देगा ये फट से, तो डर के मारे वो बैठ जाता है, उठ खड़ा हो जाता है। वही आवाज हम आप देंगे शायद न भी सुने हो, क्योंकि उसको अपरिचित आवाज लगेगी, और उस मदारी की आवाज से परिचित होने के कारण उठ बोला नहीं कि पहले खड़ा हो जाता है, बैठ बोला नहीं कि बैठ जाता है। यही हिसाब है हम लोगों का। यहां पर जब तक एक दूसरे के ऊपर वही परमेश्वर डंडा लेके न चले तो हम लोग बात मानते नहीं है, तो शासक भी वही बन गया। बच्चे हो गए शासित शास्य और माता पिता हो गए शासक। तो ये शास्य और शासक के भाव से सृष्टि की व्यवस्था चलाने का जो क्रम है ये परमेश्वर ने एक तरीका निकाला। लेकिन हम लोगों को ये भ्रम हो जाता है, जैसे उस किसान को भ्रम होता है कि खेती मैंने की, लेकिन वहां याद रखे कि ये सब परमेश्वर की कृपा का ही फल है, उन्हीं की देन है, हम तो एक निमित्त मात्र बने। हमको तो ये भी नहीं पता था कि कौन सा बीज अंकुरित होगा और कौन सा नहीं। जो हो गया, जिसमें दाने लग गए, अच्छे दाने हुए, अच्छी बात है। ऐसा यह पृथिव्याम तिष्ठन, जो रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, भगवान ने अपने सत्ता का, मेरा रहने का जो ढंग है, कहां कैसे रहता हूं, ये शायद सातवें अध्याय में है, रसोहम अप्सु कौन्तेय। तो वही पृथिव्याम तिष्ठन, पृथिव्या अंतरो, पृथ्वी में रह करके और पृथ्वी के अंदर, यम पृथ्वी न वेद, पृथ्वी को भी नहीं पता है कि मेरे अंदर कौन है, और पृथ्वी का जो जो कार्य है वो सारा कार्य हो रहा है किसके माध्यम से, उस परमेश्वर के माध्यम से। पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी का बना हुआ जो हम लोगों का ये पार्थिव शरीर, इसके अंदर रहकर यमयति शासन कर रहे हैं जो आत्मा है, इसका नाम पड़ गया अंतर्यामी। इत्यादि नियमन श्रुतिश्च अत्यंत भेदे नियम नियामक भावा अनुपत्ते। तो जो नियमित हो रहा है नियामक है, नियम और नियामक दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। ऐसे अभेद को बताने के लिए ही ये मंत्र भी आया, ये भी एक तरह से अर्थवाद है, प्रशंसा है। और भी अर्थवाद का रूप दिया, तथा स वा एष पुरुषो अन्न रसमय यद अग्ने रोहितम रूपम इत्याद्या तत्व परिशोधन रूपा श्रुतयो जीव ईश्वर उभयगत विरुद्ध धर्म निरसन द्वारा तयो ऐक्यम एव संभावयन्ति। स वा एष पुरुषो अन्न रसमय, हम लोगों के शरीर में अन्न, अन्न से रस, रस से ये शरीर की जो पुष्टि आदि हो रही है, उस रस रूप में रहने वाला भी परमात्मा ही है। यद अग्ने रोहितम रूपम, अग्नि के अंदर जो रोहित लालपना आदि दिख रहा है ये भी उसी का रूप है। इत्याद्या और भी जो मंत्र आदि हैं, तत्त्वम परिशोधन रूपा, तत् और त्वम पदार्थ का शोधन करने के बाद श्रुति ने जीव और ईश्वर दोनों का जो जो विशेषण था, जो उपाधि थी, जो उनके विरोधी धर्म थे, जीव और ईश्वर को भेद करने वाला जो धर्म था, अर्थात जो जो उसके विरुद्ध लक्षण थे, उन सबको हटा दिया। तत्त्वम का जब शोधन यही तो किया है ना, थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लीजिए। तत् का अर्थ होता है सर्वज्ञत्व, परोक्षत्व, विशिष्ट चैतन्य, और त्वम का होता है अल्पज्ञत्व, अपरोक्षत्व, विशिष्ट चैतन्य। ईश्वर परोक्ष है, जीव अपरोक्ष है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। अल्पज्ञता और सर्वज्ञता को लेकर दोनों में भेद हो गया, परोक्षता और अपरोक्षता को लेकर दोनों में भेद हो गया। यदि इन विरुद्ध धर्मों को, जो विरोधी हैं ये, परोक्ष और अपरोक्ष के कारण जीव और ईश्वर जो अलग अलग दिख रहे हैं, इसको हटा दो। अल्पज्ञता और सर्वज्ञता रूपी जो विरोधी है इसको हटा दो, तो चैतन्य चैतन्य एक ही हुआ ना। तो ये जो है जीव ईश्वर उभयगत, दोनों में होने वाला जो विरुद्ध धर्म था, निरसन, उसको हटाना, निवृत्त कर देना, इसके द्वारा तयोः ऐक्यम एव संभवति, संभावयन्ति। तो अर्थवाद के जो ये सात रूप दिखाए थे, सृष्टि स्थिति प्रवेश, सृष्टि स्थिति लय प्रवेश, संयमन, तत्वम पदार्थ परिशोधन और फल प्रतिपादन, ये भी अर्थवाद का ही एक रूप है। तत्वमसी महावाक्य के द्वारा विरुद्ध धर्मों को हटा करके और चेतन की एकता को बताना जो उद्देश्य है, ये अपने आप में अर्थवाद है, प्रशंसनीय है। और भी उदाहरण दे रहे हैं, ये सब मिला करके कल ये बता देंगे कि जब इस प्रक्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है वही व्यक्ति जीवन मुक्त होते हैं, और जीवन मुक्त हो गए तो फिर जीवन सफल हो गया, और क्या चाहिए, इसका फिर विचार करेंगे कल।